लिंग स्वरूप कथनम शब्द सामर्थ्यम लिंगम इत्याहु सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगमित्यभिधीयते इति सामर्थ्यम रूढिरेव तेन सामाख्यातो अस्याः वेदः यौगिक शब्द सामाख्यतो रूढयात्मक लिंग शब्दस्य भिन्नत्वात् तेन बरिदेव सदनम दामि इति मंत्रस्य कुशलवनांगत्वं न तूलपादी वनांगत्वं तस्य बरिर्दामि इति लिंगात् तल्लवनं प्रकाशयितुं समर्थत्वात् एव मंत्रत्रापि लिंगाद् विनियोगो द्रष्टव्यः। अर्थ शब्द की अभिधा शक्ति को लिंग कहा जाता है, इसलिए तंत्रवार्तिक में कुमारिल भट्ट ने कहा है कि सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंग मित्यभिधीयते अर्थात सभी शब्दों में होने वाले सामर्थ्य को लिंग कहा जाता है, इसलिए सामाख्या से यह लिंग भिन्न माना जाता है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि यौगिक शब्द सामाख्या से रूढ़यात्मक लिंग शब्द भिन्न होता है, इसलिए तो बरहि देव सदनम दामि यह मंत्र कुशल वन क्रिया का अंग है, न कि उलप आदि तृणों के खंडन का। बरहिर्दामि निष्ठ लिंग से बरहि देव सदनम दामि यह मंत्र कुशल वन का बोधक कराने में समर्थ है। इसी प्रकार अन्य स्थलों पर भी लिंग द्वारा विनियोग समझना चाहिए। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी एवं श्रुतिम निरुक्त लिंगम लक्ष्यति शब्द सामर्थ्यमिति लिंगमिति लक्ष्य निर्देशः सामर्थ्यम लिंगमित्युक्ते अंकुरादि जननानुकूल बीजादि सामर्थ्ये तत्प्रसंगः स्यात्तो द्वाराणाय शब्देति विशेषणम् सामर्थ्यम द्विविधम शब्दगत अर्थगतम चेति तत्राद्यस्य लक्षणम त्रोक्तम तत्रैव वृद्धसम्मतिम प्रदर्शयस्तदर्थमाह यथाहुरित्यादिना अन्त्यन्तु यथा स्त्रुवेणा वद्यति त्यवदाना सामान्य शेषत्वावगमेति श्रुवस्य लिंगा सामर्थ्य रूपादाज्य सान्नायदि द्रव द्रव्यावदान विशेषांगत्वं स्त्रुवेण मांसादि द्रव्यावदानस्य कर्तृमशक्यत्वादिति ननु रूढि रूपस्य सामर्थ्यस्य सामाख्यातो न भेदः स्यात् तथा च बर्हि देव सदनम दामिति मंत्रस्योप वनांगत्वमपि स्यादित्या शंकयाः समाख्यातो भेद इति रूढि रूपस्य सामर्थ्यस्येति शेष यौगिक शब्द रूप समाख्यातो रूढ़यात्मकस्य लिंग शब्दस्य भेद एव प्रसिद्धेः तथा च न तयोर भेद इत्यर्थः समाख्यातो न भेद इति पाठेपि स एवार्थः रूढि रूपस्य सामर्थ्यस्य समाख्यातो भेदे फलित माह तेनेति रूढि समाख्ययोर्मिथो भेदेन पुरोडाश सदनम भूतं बरि खंडयामिति श्रुत पद सामर्थ्य बरि देव सदनम दामिति मंत्रस्य कुशकाशादि रूपाणां मुख्य बरिषां लवनांगत्वं न तु समाख्यातो दर्भ सदृशानाम उपलपादि रूपत्रिण विशेषाणां गौड़ बरिषां लवनांगत्वमित्यर्थः उक्ते अर्थे हेतुमाह तस्येत्यादिना तस्येति बरि देवेत्यादि मंत्रस्येत्यर्थः तल्लवनमिति कुशलवनमित्यर्थः एव मन्यत्रापीति बर्हि देव सदनम दामिति मंत्रस्य कुशलवनांगत्वं वदग्नयजुष्टं निर्वपामि इत्यादि मंत्रस्यापि निर्वापा विप्रकाशन सामर्थ्य रूपालिंगा निर्वापादौ विनियोग इत्यर्थः अत्रेदं बोध्यं तस्य हि मंत्रस्य निर्वापांगत्वं संभवति यस्य यत्प्रकाशन सामर्थ्यं तस्य मंत्रस्य तदंगत्वमिति न्यायात् तच्च लिंगं द्विविधं सामान्य संबंध बोधक प्रमाणांतरापेक्षं तत्सापेक्षं चेति तत्र यद्विना यन्न संभवति तस्य तदंगत्वं सामान्य संबंध बोधक प्रमाणांतरापेक्ष केवला लिंगाद् भवति यथार्थ ज्ञानस्य कर्मानुष्ठानंगत्वं अर्थज्ञानं विना तदनुष्ठानात् संभवात् यद्विना यत् संभवति तस्य तदंगत्वं तत्सापेक्ष लिंगाद् भवति यथोक्त मंत्रस्य निर्वापांगत्वं निर्वापस्य हि संभवति किन्तु पूर्व साधनी भूत निर्वाप प्रकाशनार्थ एव तादृश निर्वाप प्रकाशनार्थत्वं च न सामर्थ्य मात्रा लभ्यते सामर्थ्यस्य निर्वाप प्रकाशन मात्रे सत्वात्। ततश्चावश्यम् प्रकरणादि सामान्य संबंध बोधकम् प्रमाणम् स्वीकर्तव्यम् तथा च दर्श पूर्णमास प्रकरणे तस्य मंत्रस्य पाठादे वानेन मंत्रेण दर्श पूर्णमासा पूर्व संबंधी किंचित् प्रकाश्यत् इत्यवगम्यते। अन्यथा दर्शादि प्रकरण पाठस्य वैयर्थापत्तिः किं तद्दर्श पूर्णमासा पूर्व संबंधी प्रकाश्य मिथ्या कांक्षायां निर्वाप प्रकाशन सामर्थ्यात् पुरोडाश निर्वाप इत्यवगम्यते। निर्वाप पंच पुरोडाश संस्कार द्वारा पूर्व संबंधिति लिंगा मंत्रस्य निर्वापार्थत्वे सति न तस्यानर्थक्यापत्तिः। तस्मात् अग्नेयजुष्टं निर्वपामि इति मंत्रस्य प्रकरणादर्श पूर्णमास संबंधितया वगतस्य निर्वाप प्रकाशन सामर्थ्य रूपा लिंगा निर्वापांगत्वमिति अर्थबोधिनी। शब्द की अभिधा शक्ति को लिंग कहा जाता है। अभिधा का अर्थ रूढ़ समझना चाहिए, यौगिक नहीं। जैसे कुशल शब्द का रूढ़ार्थ दक्ष है एवं यौगिकार्थ कुश लाने वाला है। सारांश यह है कि यहाँ लिंग शब्द का तात्पर्य शब्द का रूढ़ार्थ बोधन सामर्थ्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि लिंग रूढ़ी है जो यौगिक शब्द से सर्वथा भिन्न है। यौगिक शब्द को ही सामाख्या कहते हैं। यद्यपि किसी शब्द के रूढ़ार्थ एवं यौगिकार्थ दोनों ही अर्थ हो सकते हैं, किंतु रूढ़ार्थ मुख्य होता है और यौगिकार्थ गौण। रूढ़ार्थ की बुद्धि में उपस्थिति या प्रतीति प्रथमतः हुआ करती है और यौगिकार्थ की बाद में। इसलिए रूढ़यात्मक लिंग से विनियोग शीघ्र होता है एवं समाख्या से बाद में। अतएव यदि किसी स्थल विशेष में विभिन्न विषयों को समझाने के लिए ये दोनों प्रमाण एक काल में ही उपस्थित हो जाते हैं तो लिंग द्वारा ही विनियोग होता है, सामाख्या द्वारा नहीं, क्योंकि लिंग विनियोग का ज्ञान शीघ्र कराता है एवं सामाख्या विलंब से। अतएव सामाख्या की विनियोग बोधक शक्ति खंडित हो जाती है। लिंग द्वारा मंत्र का विनियोग बोध होने में सर्वप्रथम मंत्र का स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन, उसके बाद वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य निरूपण, तत्पश्चात अंगा अंगी भाव बोधक श्रुति कल्पना एवं अंत में विनियोग बोध होता है। उदाहरण द्वारा इस विषय का स्पष्टीकरण हो जाएगा। बर्हि देव शदनम दामि एक मंत्र है। बर्हि शब्द का रूढ़ार्थ कुश एवं यौगिकार्थ उलप होता है। इस मंत्र का अर्थ यह है कि मैं बर्हिश को जो देवताओं के बैठने का स्थान है काटता हूँ। अब प्रश्न यह होता है कि यह मंत्र कुशल वन कुश काटने की क्रिया में विनियुक्त होगा अथवा उलप आदि के लवन में। लिंग द्वारा विनियोग होने के लिए सर्वप्रथम मंत्रार्थ का बोध आवश्यक है, स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन। इसके बाद मंत्रगत दामी एवं बर्हिश पदों के सामर्थ्य से यह ज्ञात होता है कि यहाँ कुश काटने का प्रसंग है। पद सामर्थ्य ही लिंग होता है। बर्हिश पद के लिंग से ही कुश का ग्रहण एवं उलप आदि अन्य तृणों का निराश हो जाता है। इस प्रकार कुश काटने के प्रसंग से श्रुति की कल्पना करनी होती है। श्रुति की कल्पना इस प्रकार होगी, इस मंत्र से कुश का लवन करना चाहिए, मंत्रेणानेन कुशल वनम कार्यम। इसके पश्चात श्रुति से विनियोग बोध इस प्रकार होगा, अस्य मंत्रस्य कुशल वनांगत्वम। इस प्रकार लिंग द्वारा विनियोग बोध होने में उक्त चार व्यापारों की आवश्यकता होती है, किंतु सामाख्या के द्वारा विनियोग होने में और अधिक व्यापारों को आवश्यकता होती है, क्योंकि सामाख्या के द्वारा विनियोग होने में उसे क्रमशः स्थान प्रकरण वाक्य लिंग श्रुति की सहायता लेनी होगी, बाद में कल्पित श्रुति से विनियोग होगा। इस प्रकार सामाख्या से विनियोग का बोध विलंब से होता है, तदपेक्षया लिंग से शीघ्र। अतएव प्रकृत स्थल में बर्हि देव सदनम दामी यह मंत्र लिंग प्रमाण से कुशल वन का अंग होगा, उलप आदि के लवन का नहीं। प्रसंग, अब लिंग अपने परवर्ती वाक्य आदि प्रमाणों से प्रबल होता है। इस विषय का निरूपण करते हैं। लिंग वाक्यादिभ्यो बलवत् तदिदं लिंगं वाक्यादिभ्यो बलवत् अतएव स्योनं ते सदनं कृणोमि इति मंत्रस्य पुरोडाश सदन करणांगत्वं सदनं कृणोमि इति लिंगात् न तु वाक्यात् अर्थ वही पूर्वोक्त लिंग प्रमाण वाक्य आदि परवर्ती प्रमाणों से प्रबल है। इसलिए स्योनम ते सदनम कृणोमी इत्यादि मंत्र सदनम कृणोमी निष्ठ लिंग से पुरोडाश के लिए स्थान निर्माण की क्रिया का अंग है और वाक्य प्रमाण द्वारा होने वाला विनियोग यहाँ मान्य नहीं है क्योंकि वह लिंग की अपेक्षा निर्बल है। स्योनम से सदनम कृणोमी का अर्थ है पुरोडाश, मैं तुम्हारे लिए समीचीन सदन अर्थात बैठने के स्थान का निर्माण कर रहा हूँ। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी। तदिदं निरुक्तं सामर्थ्य रूपं लिंगं वाक्य प्रकरणादिभ्य प्रबल मित्याह तदिद मित्यादिना अत एवेति लिंगस्य वाक्यादिभ्यो बलवत्ता देवेत्यर्थः। स्योनं ते सदनं कृणोमि इत्यत्र घृतस्य धारया सुषेवं कल्पयामि तस्मिन् सिदामृते प्रतितिष्ठ ब्रीहिणा मेध सुमनस्यमानः इति वाक्यशेषः। भो कुरुडाश ते तव स्योनं समीचीनं सदनं स्थानं कृणोमि करोमि तच्च स्थानं घृतस्य धारया सुष्ठु सेवितुं योग्यं कल्पयामि। भो ब्रीहिणा मेध ब्रीहि सारभूत त्वं सुमनस्यमानः समाहितमनस्कः सन तस्मिन् ऋते समीचीने स्थाने सिद्ध उपविश प्रतिष्ठित तत्र स्थो भवेत्यर्थः तत्र च तस्मिन् नित्यनेन तश्शब्देन प्रकृतवाचकेन पूर्वोक्त राधयोरेक वाक्यत्वे सिद्धे मंत्रद्वयस्याभावा सर्वोप्ययम् मंत्रः स्थानकरणस्यांगं पुरोडाश स्थापनस्य चांगं भवति। तत्र विनियोजिका श्रुतिशैवं कल्पनीया सर्वेणानेन मंत्रेण स्थानं कर्तव्यमिति तथा सर्वेणानेन मंत्रेण तत्र पुरोडाशः स्थापनीय इति च तथा च सदनकरण पुरोडाश स्थापनयोरस्य मंत्रस्य विकल्पः समुच्चयो वा स्वेच्छया भविष्यतीति पूर्वपक्षः। तत्र हि यदेतत् पूर्वोत्तरार्धयोः परस्परान्वये नैकवाक्यं सम्पन्नं तदेतदुत्तरार्धस्य सदनकरणे शक्तिं कल्पयित्वा सकलं मन्त्रं सदने विनियोक्तुं नार्हति तथा तदेव वाक्यं पूर्वार्धस्य पुरोडाश स्थापने शक्तिं कल्पयित्वा न पुरोडाश स्थापने कृत्स्नं मन्त्रं विनियोक्तुं प्रभवति। ततश्च लिङ्गकल्पन व्यवधानेन वाक्यं श्रुतिं प्रति विप्रकृष्यते प्रत्यक्षं तु लिङ्गद्वयं तां श्रुतिं प्रति न विप्रकृष्यते तथा सति लिङ्गेन वाक्यस्य प्राधानमन्त्रस्यार्धद्वयं सदनकरणस्थापनयोर्व्यवस्थितमिति राधान्तः तमेतमभिप्रेत्याह मन्त्रस्येत्यादिना लिङ्गादिति सदनकरण प्रकाशन सामर्थ्य रूपादित्यर्थः न तु वाक्यादिति पुरोडाश सदन साधन रूपार्थकरणांगत्वं न तु सदन साधन लक्षण शेष शेषी रूपार्थ प्रतिपादकात् सदनं कृणोमि तस्मिन् सीदेत्येवं सहोच्चारण रूपाद्वाक्यादित्यर्थः। अर्थबोधिनी प्रकृत स्थल में उदाहरण द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि लिंग प्रमाण वाक्य प्रमाण से प्रबल होता है। स्योनम ते सदनम कृणोमि एक मंत्र आदि भाग है, पूरा मंत्र इस प्रकार है स्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुषेवं कल्पयामि तस्मिन् सिदामृते प्रतितिष्ठ ब्रीहिणां मेध सुमनस्यमानः। इसका अर्थ इस प्रकार है भोः पुरोडाश ते तव स्योनं समीचीनं सदनं कृणोमि करोमि तच्च स्थानं घृतस्य धारया सुषेवं सुष्ठु सेवितुं योग्यं कल्पयामि। भो ब्रीहि सारभूत त्वं सुमनस्यमानः समाहितमनस्कः सन तस्मिन् वृते समीचीन स्थाने सीद उपविश प्रतितिष्ठ तत्र स्थिरो भवेत्यर्थः। वाक्य प्रमाण द्वारा विनियोग की प्रक्रिया। इस मंत्र के उत्तरार्ध में तस्मिन् पद का प्रयोग हुआ है, तस्मिन् पद सापेक्ष है, इससे मंत्र के पूर्वार्ध की ओर संकेत होता है और इस प्रकार मंत्र के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध अलग अलग न होकर मिलकर एक वाक्य समझा जाता है। इसी पूरे एक मंत्र का विनियोग किसी क्रिया में होता है। इसके पश्चात सदनम कृणोमि एवं तस्मिन् सीदलिंग से संपूर्ण मंत्र स्थानकरण एवं पुरडाश स्थापन दोनों क्रियाओं में काम आता है। तदनुसार क्रमशः दो प्रत्यक्ष श्रुतियों की कल्पना इस प्रकार करनी पड़ती है, सर्वेण अनेन मंत्रेण तव पुरडाश स्थापनीय। श्रुति कल्पना के पश्चात विनियोग की विशेषता यह होगी कि संपूर्ण मंत्र को चाहे स्थानकरण अथवा पुरडाश स्थापन किसी एक क्रिया में विनियुक्त माना जाए अथवा दोनों में। इस प्रकार वाक्य प्रमाण से विनियोग मानने में पूरे मंत्र का विनियोग अलग अलग दो क्रियाओं में होता है, जबकि मंत्र का पूर्वार्ध उत्तरार्ध की क्रिया के लिए अप्रासंगिक है और मंत्र का उत्तरार्ध पूर्वार्ध की क्रिया के लिए अप्रासंगिक है। वाक्य लिंग श्रुति विनियोग इन चार व्यापारों की आवश्यकता होगी, किंतु लिंग के द्वारा विनियोग होने पर उक्त स्थिति नहीं होगी। स्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुषेवम कल्पयामि। इस मंत्र के पूर्वार्ध में सदनम कृणोमि लिंग से यह ज्ञात हो जाता है कि उक्त मंत्रांश स्थानकरण के लिए इसके अनंतर अनेन स्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुषेवम कल्पयामि मंत्रेण स्थानम कर्तव्यम ऐसी श्रुति की कल्पना करनी होगी। श्रुति कल्पना के पश्चात विनियोग हो जाएगा। इसी प्रकार तस्मिन् सिदामृते प्रतिष्ठित व्रीहिणाम मेधसु मनस्यमानः इस मंत्रोत्तरार्ध में तस्मिन् सीदलिंग से अर्थ प्रकाशन के पश्चात श्रुति कल्पना एवं विनियोग होगा और मंत्रोत्तरार्ध पुरोडास स्थापन में विनियुक्त हुआ माना जाएगा। अतः लिंग प्रमाण से विनियोग मानने में मंत्र का पूर्वार्ध पूर्वार्धगत क्रिया में विनियुक्त होगा। इस प्रकार कोई भी मंत्रार्थ किसी भी क्रिया के लिए अप्रासंगिक हो सकेगा। मंत्रार्थ बोध के पश्चात लिंग श्रुति एवं विनियोग इन तीन व्यापारों की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि लिंग द्वारा विनियोग मानने में एक अंगभूत कोई मंत्रार्थ अंगभूत क्रिया के लिए अप्रासंगिक नहीं ठहरता है, जबकि वाक्य प्रमाण द्वारा संपूर्ण मंत्र का आधा आधा अंश स्थानकरण एवं पुरोडाश स्थापन इन दोनों क्रियाओं के लिए अप्रासंगिक होता है। लिंग द्वारा विनियोग मानने में लिंग श्रुति एवं विनियोग इन तीन श्रुति एवं विनियोग इन चार व्यापारों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार लिंग एवं विनियोग के बीच लिंग एवं श्रुति इन दो व्यापारों का व्यवधान है। इस प्रकार वाक्य विनियोग बोध में अपेक्षाकृत भी प्रकृष्ट है एवं लिंग सन्निकृष्ट, अतएव लिंग द्वारा विनियोग होगा वाक्य द्वारा नहीं। इसलिए स्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुषेवम कल्पयामि यह पूर्वार्ध मंत्र पुरोडाश के सदनकरण का अंग होता है। प्रसंग अब वाक्य प्रमाण के लक्षण एवं उसके द्वारा होने वाले अंगांगी भाव के बोधक का निरूपण किया जा रहा है। वाक्य स्वरूपाख्यानम समभिव्याहारो वाक्यम समभिव्याहारस्य साध्यत्वादिवाचक द्वितीयाद्यभावेपि वस्तुतः शेषशेषिवाचक पदयोः सहोच्चारणम् यथा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम् श्लोकम् शृणोति। अत्र पर्णजाहुः समभिव्याहारादेव पर्णताया जुह्वङ्गत्वम् न चानर्थक्यम् अन्यथापि जुह्वाः सिद्धत्वादिति वाच्यम् जुहु शब्देन तत्सार्ध्या पूर्वलक्षणात् तथा च वाक्यार्थ पर्णतया वत्तः विधारण द्वारा जुह्व पूर्वम् भावयेदिति एवं च पर्णतया यदि जुहु क्रियते तदैव तत्साध्यम् पूर्वम् भवति नान्यथेति गम्यत इति न पर्णताया वैयर्थम् अवत्थ विधारण द्वारेति चावश्यम् वक्तव्यम् अन्यथा श्रुवादिष्वपि पर्णतापत्तेः सेयं पर्णता अनारभ्याधि तापि सर्वप्रतिसेवान्वेति न विकृतिषु तत्र चो दकेनापि तत्प्राप्ति संभवात् पौनरुक्त्यापत्तेः। अर्थ समभिव्याहार अर्थात संबद्ध उच्चारण को वाक्य कहते हैं। अभिप्राय यह है कि अंगत्व का ख्यापन करने वाली द्वितीय आदि विभक्तियों के अभाव में अंग एवं अंगी का बोध कराने वाले पदों के सहोच्चारण को वाक्य कहा जाता है। उदाहरण इस प्रकार समझा जा सकता है, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। एक विधि है, इसका अर्थ यह है कि जिस पुरुष की जुहु पलाश काष्ठ निर्मित होती है वह अपनी कुख्याति नहीं सुनता है। यहाँ पर्णता और जुहु इन दोनों में पर्णता जुहु का अंग है, क्योंकि पर्णमयी और जुहु दोनों का सहोच्चारण रूप वाक्य प्रमाण प्राप्त होता है। यह भी कहना समीचीन नहीं है कि पर्ण के अतिरिक्त अन्य काष्ठ से जुहू के निर्माण हो सकने के कारण पर्णता की व्यर्थता सिद्ध होती है। यह इसलिए यहाँ जुहू शब्द का अर्थ जुहू से उत्पन्न होने वाला अपूर्व समझना चाहिए, अर्थात जुहू शब्द की जुहू से साध्य अपूर्व में लक्षणा है, तब पर्णमयी जुहुर भवति इत्यादि वाक्य का स्पष्ट अर्थ यह होगा कि पर्णतयावत्त हविर धारण द्वारा जुहु पूर्वम भाव एत, अर्थात पलाश निर्मित जुहु में खंडित हवि को रखकर जुहुगत पलाश निर्मितत्व से जुहु से होने वाले अपूर्व को संपन्न करे। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि यदि जुहु पलाश की बनाई जाएगी तभी जुहु से साध्य अपूर्व की उत्पत्ति हो सकेगी, अन्यथा नहीं। इसलिए पर्णमयी यह कहना व्यर्थ नहीं है। उक्त अर्थबोध वाक्य में अवत्त हविर धारण द्वारा शब्द का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, नहीं तो श्रुवा आदि अन्य यज्ञ पात्र भी पर्ण निर्मेय समझे जाने लगेंगे। उक्त पर्णता यद्यपि अनारब्ध विधि में अर्थात सामान्य विधि में अधीत है, फिर भी इसका अन्वय सभी प्रकृति यागो में होता है, विकृत यागो में नहीं, क्योंकि विकृत यागो में पर्णता की प्राप्ति प्रकृति वद विकृति कर्तव्य अर्थात विकृति याग को प्रकृति याग के समान करना चाहिए। इस अतिदेश वाक्य से भी होने के कारण पुनरुक्ति हो जाने की आपत्ति होगी। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी वाक्यम लक्ष्यति समभी व्याहार इति वाक्यमिति लक्ष्य निर्देश समभी व्याहार शब्दम व्याचष्टे समभी व्याहार इत्यादिना तत्रोदाहरण माह यथेत्यादिना पर्णता जुहो रीति शेषे शेषी लक्ष्य लक्षण योरिति शेष ननु काष्ठांतरेण जुहुआ सिद्धत्वात् तर्पणताया अनर्थक्यं स्यादित्याशंकय परिहरति न चेत्यादिना न च वाक्यमित्यत्र हेतुमाह जुहु शब्दे नित्यादिना यदि जुहु पर्णतयैव क्रियते तदैव जुहुआ पूर्वं जन्यते नान्यथेति भावः फलितं वाक्यार्थमाह तथा चेत्यादिना क्वचित् पुस्तके वतित्यथ प्रागितितः परत्रैवं च पर्णतया यदि जुहु क्रियते तदैव तत्साध्यं पूर्वं भवति नान्यथेति गम्यत् इति न पर्णताया वयर्थ्यामिति पाठ अवद्यत् इत्यवत्तम् अवत्तम् च तद्विश्य तस्य धारणद्वारेत्यर्थ अवत्येत्या देव्यावृत्तिमाह अन्यथेत्यादिना अनथा वत्तेत्यादेरनुपादान इत्यर्थ श्रुक्श्रुवादिभिराज्य हविर्धारण द्वारे वोपक्रियत इति भावः ननु पर्णताया अनारभ्याधीत तत्त्वदनारभ्य विधेश्य सामान्य विधित्वात् पर्णता सर्वेषु प्रकृति विकृति यागेषु समन्वेत्वी त्याशंकयाः सीयमित्यादिना एव कारव्यावर्तमाह न विकृति स्वीति तत्रेति विकृति स्वित्यर्थ चोदके नेति प्रकृति विकृति कृति कर्तव्येति चोदक शब्दितादिदेश वाक्ये नेत्यर्थ तत् प्राप्ति संभवादिति पर्णता प्राप्ति संभवादित्यर्थ पौनरुक्त्यापत्तेरिति प्राकृतौ वा वाद विरुक्तत्वादिति न्याय विरोधेन पौनरुक्त्य रूप दोषापत्तेरित्यर्थ अर्थ बोधिनी। ग्रंथकार ने लिंग एवं वाक्य के बीच बलाबल का विचार अवश्य किया है, किंतु अभी तक वाक्य का लक्षण नहीं बतलाया था, इसलिए अब वाक्य का लक्षण करते हैं। समभी व्याहार को वाक्य कहा जाता है और साध्य अंग का बोध कराने वाली द्वितीय आदि विभक्तियों के बिना भी केवल समभी व्याहार से अंगांगी भाव का बोध कहीं हो जाता है। ब्रीहीन प्रोक्षति आदि वाक्यों में द्वितीय विभक्ति ब्रीही एवं प्रोक्षण में होने वाले अंगांगी भाव को समझाती है। सर्वत्र यह नियम नहीं है कि श्रुति या उक्त प्रकार के लिंग से अंगांगी भाव का बोध हो, अपितु कहीं समभी व्याहारात्मक वाक्य प्रमाण से भी अंगांगी भाव का बोधक होता है। अभिव्याहार का अर्थ कथन या उच्चारण होता है, इसलिए वाक्य को सहोच्चारण भी कहा गया है। सहोच्चारण का अर्थ है साथ साथ उच्चारण। इससे यही सिद्ध होता है कि संबद्धतया अभिव्याहार अथवा सह उच्चारण को वाक्य कहा जाता है। प्रश्न यह है कि संबद्धतया अथवा साथ साथ उच्चारण किनका होना चाहिए। उत्तर है कि अंग एवं अंग के वाचक पदों का। उदाहरण के लिए यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम श्रुणोति। इस मंत्र में पर्णमयी एवं जुहु इन दो पदों का साथ साथ अर्थात अव्यवधानेन उच्चारण हुआ है और दोनों ही पद अंग एवं अंगी के बोधक हैं। पूर्व पद पर्णमयता रूप अंग का बोधक है और परवर्ती जुहु पद अंगीभूत खंडित घृत पात्र का बोधक है। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम श्रुणोति का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति की जुहु पर्ण की बनी होती है वह पाप श्लोक कुख्यात को नहीं सुनता है। जुहू घी रखने का एक पात्र विशेष होता है। यह पात्र पलाश की लकड़ी से बनाया जाता है। यदि पलाश के अतिरिक्त अन्य किसी काष्ठ से जुहू बनाई जाए तो जुहू से होने वाला अपूर्व नहीं उत्पन्न होगा। इस प्रकार जुहू का प्रयोजन ही सिद्ध न हो सकेगा। यदि जुहू पर्ण की बनी होगी तो उसका फल यही होगा कि यज्ञ करने वाला व्यक्ति अपने पाप श्लोक को नहीं सुनेगा। श्लोक शब्द का अर्थ है कुख्याति बदनामी हुआ। यहाँ पर्णमयी और जुहू दोनों पद अव्यवही तत्वेन उच्चरित हैं, इसलिए उनके अर्थों के बीच एक दूसरे से अंगांगी भाव रूप संबंध समझा जाता है। पर्णता अर्थात पलाश निर्मितत्व जुहू का अंग है। जुहू जब पर्ण से बनेगी तभी उसमें पर्णता समवेत हो सकेगी। जिस प्रकार विभाग संख्या 25 में अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या गवा सोमम प्रणाति इस विधि वाक्य के अरुणया पद से अरुणा को अंग नहीं माना जाता। अरुण तो स्वयं गाय ही है जो कि अंगी है, अपितु अरुणे को जो गाय में संवेत रहता है। उसी तरह प्रकृति स्थल में पर्णमयी अथवा पर्ण जुहू का अंग न होकर पर्णता अर्थात पलाश निर्मित्व जो जुहू में संवेत रहता है का अंग है। पूर्व पक्षी की दृष्टि में जुहू के पर्ण निर्मित होने में कुछ भी सार्थकता नहीं है, क्योंकि किसी पर्णेतर काष्ठ से भी जुहू का निर्माण हो सकता है अनथ्यापि जुहुवा सिद्धत्वात्। पूर्व पक्षी के इस कथन का खंडन करता हुआ सिद्धांति कहता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए इति न वाच्यम, क्योंकि जुहू शब्द का लक्ष्यार्थ पर्ण से बनी हुई जुहू तत्पर्णमयी जुहू से सिद्ध होने वाली अपूर्व इतना है। जुहू शब्देन तत्साध्या पूर्व लक्षणात अर्थात जहाँ कहीं भी जुहू का प्रसंग हो उसे पर्ण निर्मित जुहू ही समझना चाहिए, क्योंकि पर्ण निर्मित जुहू से ही शास्त्र वर्णित फल साधन भूत अपूर्व की उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं। इसलिए जुहू शब्द पर्ण निर्मित जुहू से साधे अपूर्व की ओर संकेत करता है। जुहू शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक पात्र विशेष इसमें श्रुआ नामक पात्र से घी हवि काट कर रखा जाता है। जुहू शब्द का प्राकृतिक एक पात्र विशेष अर्थ रूढ़ है, हवन के लिए उपयोगी कोई पात्र हुवते अनया इति जुहू। इसकी उत्पत्ति के अनुसार जुहू शब्द का यौगिक अर्थ यज्ञोपयोगी पात्र लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए श्रुआ उपभृत श्रुआ ध्रुवा आदि पात्र सभी जुहू की संज्ञा से अभिहित हो सकते हैं। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम श्रुणोति। यहाँ जुहू शब्द से प्रथम अर्थ अभिप्रेत है, किंतु उक्त प्रथम अर्थ का बोध कैसे होगा। अतएव ग्रंथकार ने यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति इत्यादि विधि का वाक्यार्थ इन शब्दों में माना है। पर्णतया अवहत्त हविर्धारण द्वारा जुहू पूर्व भावयेत अर्थात पर्ण की बनी जुहू में कटे हुए हवि को रखकर जुहूगत पर्ण निर्मित्व से जुहू से होने वाले अपूर्व को उत्पन्न करे। इस प्रकार जुहू भी पर्ण की बनानी होगी और जुहू शब्द का अर्थ पात्र विशेष होगा, क्योंकि पात्र विशेष में ही कटे हुए हवि को रखा जाता है। अन्य पात्र अन्य प्रयोजन के लिए होते हैं, उदाहरण के लिए श्रुआ नामक पात्र से हवि को काटा जाता है या उससे हवन किया जाता है। उसका आकार चमचे जैसा होता है, उसका प्रयोजन यह नहीं होता कि कोई पदार्थ उसमें रखा रहे। इसी प्रकार अन्य पात्रों के भी विशेष प्रयोजन होते हैं, लेकिन उक्तवाच्यार्थ पर्णतया अवत्त हविर्धारण द्वारा जुहुव पूर्वम भावेत में अवत्त हविर्धारण द्वारा अंश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, अन्यथा जुहु पद का रूढ़ार्थ लेना अनिवार्य नहीं होगा। और यौगिक अर्थ लेकर पर्ण में जुहू वाक्य से श्रुआ आदि अन्य पात्र भी पर्ण के बनाए जाने लगेंगे, जबकि ये पात्र पर्ण से नहीं बनते अपितु खदिर आदि अन्य काष्ठों से बनते हैं। सेयम पर्णता पौन रूप्यापत्ति वाक्य के भावार्थ ज्ञान के लिए वाक्यगत कुछ पारिभाषिक शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक होगा। ये शब्द है अनारभ्याधि प्रकृति विकृति एवं चोदक अनारभ्य विधि किसी याग के विवरण को प्रारंभ करके उसी विवरण के अंतर्गत उसी याग के लिए अपेक्षित विधि वाक्य को अनारभ्य विधि कहा जाता है। इस विधि को विशेष विधि भी कहा जाता है क्योंकि शास्त्र में याग विशेष की प्रक्रिया के विवेचन को प्रारंभ करके उस याग के प्रसंग में ही यह विधि प्रवृत्त होती है। इसके विपरीत वह विधि जो किसी याग विशेष का विवेचन प्रारंभ करके उसके प्रसंग में न पढ़ी गई हो अपितु सभी यज्ञों में समान रूप से प्रवृत्त हो अनारभ्य विधि अथवा सामान्य विधि कही जाती है। यस्य पर्णमयी जुहुर भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। इस विधि का पाठ किसी याग विशेष के प्रसंग में नहीं आया है इसलिए यह विधि अनारभ्य विधि अर्थात सामान्य विधि है। प्रकृति प्रकृति ऐसे याग को कहते हैं जिसकी अंगों सहित संपूर्ण संपादन विधि वर्णित हुई हो उसे अपने अनुष्ठान के लिए किसी दूसरे स्थल से किसी विधान को ग्रहण न करना पड़े ऐसे यागों का विधान स्वयं में पूर्ण होता है। दर्श याग एवं पूर्णमास याग प्रकृति कहे जाते हैं क्योंकि इन यागों के प्रकरण में इनका पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। किसी भी अंग विधान के लिए ये याग किसी इतर विधि पर आश्रित नहीं रहते। विकृति विकृति ऐसे यागों को कहते हैं जिनका विवेचन स्वतः पूर्ण न हो इन यागों के प्रकरण में अनुष्ठानापेक्षित सभी अंगों का पाठ नहीं मिलता है अतएव अपने अनुष्ठान की पूर्णता के लिए उन्हें अन्य प्रकृति यागों पर निर्भर रहना पड़ता है। जिन यागों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें इनका प्रकृति याग कहते हैं और जिन अंगों को ये अपनी प्रकृति से प्राप्त करते हैं उन अंगों को चोदक प्राप्त या अतिदेश प्राप्त कहते हैं। प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य अर्थात प्रकृति के समान ही विकृति याग को करना चाहिए यह वाक्य चोदक या अतिदेश कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर्य एक ऐसा याग है जिसे विकृति कहा जाता है क्योंकि अनुष्ठान के लिए अपेक्षित कई अंगों का विधान इसके प्रकरण में पठित नहीं है अतएव अंगों की प्राप्ति अन्य प्रकृति याग से होती है। चोदक प्रकृतिविद विकृति कर्तव्य इस वाक्य को चोदक वाक्य कहते हैं। चोदक का अर्थ प्रेरक या विधायक है। इस वाक्य सुनने से यह प्रेरणा मिलती है कि प्रकृति याग के समान ही विकृति याग का भी अनुष्ठान करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि विकृति याग में कुछ अपेक्षित अंगों का विधान न प्राप्त होने से अनुष्ठान काल में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक होता है कि इस याग का संपादन कैसे हो। उसी समय प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य यह वाक्य प्रकृति को विकृति को प्रकृति के समान अनुष्ठित करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार चोदक वाक्य भी विधि के अंतर्गत आ जाता है। चोदक वाक्य को अतिदेश वाक्य भी कहते हैं जैसा कि अभी बतलाया जा चुका है। यस्य पर्णमयी जुहुर भवति विधि अनारभ्य विधि है इसमें पठित पर्णमयी अनारभ्याधीत है। उक्त विधि का उपयोग प्रकृति यागों में होने का विधान है विकृति यागों में नहीं क्योंकि यागों में उसकी व्याप्ति प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए। प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य इस चोदक वाक्य से ही हो जाएगी इसलिए यहाँ भी विकृति यागों में उसका विधान मानने पर दो बार विधान हो जाने पर पुनरुक्ति नामक दोष की आपत्ति होगी। प्रसंग अब पूर्व संकेतिक प्रकृति विकृति एवं अनारभ्य विधि का लक्षण किया जा रहा है। प्रकृति विकृत्यानारभ्य विधि नाम लक्षणानि यत्र समग्रांगोपदेशः सा प्रकृतिः यथा दर्श पूर्णमासादिः तत्प्रकरणे सर्वांग पाठात् यत्र न समग्रांगोपदेशः सा विकृतिः यथा सौर्यादिः तत्र कतिपयांगानां मतिदेशेन प्राप्तत्वात् अनारभ्य विधिः सामान्य विधिः तदिदं वाक्यं प्रकरणादिभ्यो बलवत् अत एव इंद्राग्नि इदं हविः इत्यादेरेक वाक्यत्वाद् दर्शांगत्वं न तु प्रकरणाद् दर्श पूर्णमासांगत्वं। अर्थ जिस याग के विषय में समस्त अंगों का पाठ मिलता है उसे प्रकृति याग कहते हैं। उदाहरण के लिए दर्श पूर्णमास आदि प्रकृति याग है क्योंकि दर्श पूर्णमास याग के प्रकरण में अनेक सभी अंगों का पाठ प्राप्त होता है। जिस याग के विषय में समस्त अंगों का पाठ नहीं प्राप्त होता है उसे विकृति याग कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर्य याग को लिया जा सकता है। सौर्य याग प्रकृति याग है क्योंकि सौर्य याग के लिए अपेक्षित कतिपय अंगों की प्राप्ति अतिदेश से होती है। सामान्य विधि को ही आरभ्य विधि भी कहा जाता है। वाक्य प्रमाण प्रकरण आदि से बलवान है, इसलिए इंद्राग्नि इदम हविः यह मंत्र वाक्य प्रमाण से दर्श नामक याग का अंग होता है, न कि प्रकरण प्रमाण से। दर्श एवं पूर्णमास दोनों का अंग। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी केयम प्रकृति विकृति शेत्याकांक्षायाम तल्लक्षण माह यत्रेत्यादिना अति देशेनेति उक्त चोदक शब्दिताति देश वाक्येनेत्यर्थ किंच यत्र चोदके नांगा प्राप्तिस्तत्रानारभ्या धीतानां सन्निवेशः दर्श पूर्णमासयोरपि चोदक प्रमाणे नांगा नाम प्राप्ते प्रकरणं पठितेरे तैरे वांगर आकांक्षा स्यात् तत्र पर्णतायाः सन्निवेशो न्याय एव गृहमेधीय यागाद्यद्यपि कुत्रापि विकृतौ नांगा नामति देशेन प्राप्तिस् तथापि तच क्लिप्तोपकारै राज्यभागादिभिरेव नैराकांक्षेण तत्रापि चोदका दंग अंगा प्राप्तिः सत्वा तत्रापि पर्णता सन्निवेशो भवत्येव किंच यो नारभ्य विधि स सामान्य विधिरित्युच्यते सामान्य विधेश्चास्पष्टत्वात् तस्य विशेषेणोपसंहारो भवति तथा चोक्तम् सामान्य विधिरस्पष्टः संहित येत विशेषतः इति तथा च समिधिन ऋचाम् सप्तदश्यस्यानारभ्याधीतत्वेऽपि न प्रकृतिषु गमनम् तस्य प्रकृतियागानाम् समिधेन पञ्चदश्यावरोधात् नापि विकृतिमात्रे तद्गमनम् तत्र चोदकप्राप्त पञ्चदस्य बाधप्रसङ्गात् किन्तु प्रत्यक्षश्रुत सप्तदश्यासु मित्रविन्दादिष्वेव प्रकृतिषु तस्य सप्तदश्यस्य गमनम् भवति तथा चोक्तम् एवं च प्रकृता वेतत् पञ्चदश्यम् प्रतिष्ठितम् विकृतौ च न यत्रास्ति सप्तदश्य पुनः श्रुतिः इति न च वाक्यवय्यर्थम् अनारभ्याधीतस्यैव सप्तदश्यस्य मित्रविन्दादिप्रकरणस्थवा केनोपसंहारात् उपसंहाराश्च नाम सामान्यप्राप्तस्य विशेषे नियमनम् ततश्च सप्तपद सप्तदश्य स्यानरभ्य विधि सामान्य विधि मित्रविन्दादिप्रकरणस्थस्य विशेष विधिरिति सर्वम् भिप्रत्याह अनारभ्य विधि सामान्य विधिरिति किंच तद्धि वाक्यम् प्रकरणाद् विलीयो भवति स्थानादितस्तु सूतराम् तस्य प्रकरणादपि दुर्बलत्वात् वाक्यस्य प्रकरणादिभ्यो बलवत्त्वा देव इन्द्राग्नि इदम् हविरित्यादि मन्त्रस्य दर्शवाक्यत्वा दर्शाङ्गत्वम् न तु दर्शपूर्णमास प्रकरणा दर्शपूर्णमासो भयाङ्गत्वमित्याह तदिदमित्यादिना अत्र चेदम् बोध्यम् अग्नो शोमाविदम् हविर्जुषेताम् विवृधेताम् महोज्यायो क्राताम् इन्द्राग्नि इदम् हविर्जुषेताम् विवृधेताम् महोज्या यो क्रातामिति सूक्तवाक्ये श्रूयते तत्र च देवतावाचकम् पदमग्निशोमादिरूपम् पौर्णमास्यादिकाले यथा देवतम् विभज्य प्रयोक्तव्यमिति तृतीये स्थितम् इदम् हविरित्यादि पदम् वसिष्ठम् तु यथोक्ताग्निशोमेन्द्राग्निम् मन्त्रद्वयगतमपि यथाक्रममावस्यामाग्नि सोमपदपरित्यागेन पौर्णमास्यामिन्द्राग्निपदपरित्यागेन च पठनीयम् तथा च सति तेषाम् मन्त्रभागानाम् सर्वशेषत्वबोधको दर्श पूर्णमासप्रकरणपाठो अनुगृहीतो भवतीति प्राप्तेऽभिधीयते अग्निशोममन्त्रशेष्येस्येदम् हविरित्यादिरूपस्येन्द्राग्निपदान्वयाश्रवणात् प्रकरणेन प्रथमं तदन्वयरूपं वाक्यं कल्पनीयं तेन च वाक्येनेन्द्राग्नि प्रकाशसामर्थ्यरूपं लिंगं कल्पनीयं तच्च लिंगं नेन मन्त्रभागेनेन्द्राग्निविषया काचित् क्रियानुष्ठेतेत्थेति विनियोजिकां तृतीयायां श्रुतिं कल्पयति ततः प्रकरणविनियोगयोर्मध्ये त्रिभिः व्यवधानं भवति अग्निशोमपदान्वयरूपं वाक्यं तु श्रूयमाणत्वालिङ्गश्रुतिभ्यामेव व्यवधीयते एवमिन्द्राग्निमन्त्रमन्त्रभागेनेन्द्राग्निविषयः शेषस्याप्यग्निशोम पदान्वया श्रवणात् प्रकरणेन प्रथमं तदन्वयरूपं वाक्यं कल्पनीयमित्यादि स्वयं मुह्यं तस्माद् वाक्येन स्वस्माद् दुर्बलस्य प्रकरणस्य बाधितत्वात् तन्मन्त्र शेषस्तत्र तत्रैव व्यवतिष्ठत् इति अर्थबोधिनी प्रकृति विकृति अतिदेश वाक्य एवं अनारभ्य विधि का विवेचन गत विभाग में हो ही चुका है, अतएव प्रकृत स्थल में उनका विवेचन नहीं किया जा रहा है। वाक्य प्रमाण प्रकरण प्रमाण से बलवान होता है, अतएव जिस स्थल में एक ही काल में दोनों प्रमाणों से विनियोग की संभावना हो रही होगी वहाँ वाक्य प्रमाण द्वारा सिद्ध विनियोग मान्य एवं प्रकरण प्रमाण द्वारा संभाव्य विनियोग त्याज्य होगा। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि इंद्राग्नि इदम हवि इत्यादि मंत्र दर्श एवं पूर्णमास दोनों यज्ञों का अंग होने लगता है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाता। न स्वीकार करने का कारण यही है कि वाक्य प्रकरण से बलवान होता है। बलवान होने के कारण पर निम्नलिखित पंक्तियों से विचार किया जा रहा है। तैतृय ब्राह्मण में प्राप्त प्रासंगिक मंत्र का पाठ इस प्रकार है। अग्निशोमा विदम हवि जुषेताम वृद्धेताम महोज्यायो क्राताम इंद्राग्नि इदम हवि जुषेताम विवृद्धेताम महोज्यायो क्राताम। मंत्र का विच्छेद इस प्रकार है। अग्निशोमो इदम हवि अजुषेताम अवृद्धेताम महज्यायः आक्राताम इंद्राग्नि इदम हवि अजुषेताम अविवृद्धेताम महज्यायः आक्राताम। मंत्रार्थ इस प्रकार है। हे अग्नि एवं सोम, तुम दोनों ने इस हवि का सेवन किया है, उसकी वृद्धि की है एवं बहुत श्रेष्ठ कर दिया है। हे इंद्र एवं अग्नि, तुम दोनों ने इस हवि का सेवन किया है, उसी वृद्धि की है एवं बहुत श्रेष्ठ कर दिया है। वाक्य प्रमाण की अपेक्षा प्रकरण विनियोग से भी प्रकृष्ट रहता है, अतएव वाक्य की अपेक्षा प्रकरण द्वारा विनियोग अमान्य होता है। प्रकरण प्रमाण से विनियोग मानने के व्यापारों का क्रम इस प्रकार होगा। प्रकरण अग्निशोमा विदम आक्राताम इंद्राग्नि इदम आक्राताम मंत्र दर्श पूर्णमास यागो के प्रसंग में पढ़ा गया है, अतएव संपूर्ण मंत्र दर्श एवं पूर्णमास यागो में विनियुक्त होना चाहिए। किंतु मीमांसा दर्शन के अनुसार पूर्णमास यज्ञ के अग्नि एवं सोम देवता हैं तथा दर्श याग के इंद्र एवं अग्नि, इसलिए पूर्णमास यज्ञ के समय केवल अग्नि एवं सोम अग्निशोम इन्हीं दो देवताओं का आमंत्रण होगा, तदनुसार इंद्राग्नि पद का परित्याग कर देना होगा। इसी प्रकार दर्श में अग्निशोम पद का परित्याग करना होगा, इस सब प्रकरण द्वारा होगा। यह सब प्रकरण द्वारा होगा। दो वाक्य कल्पना दर्श याग के अनुष्ठान में अग्निशोम पद का परित्याग कर दिया जाता है, तब उक्त मंत्र का यह रूप होगा। इदम हवि जुषेताम विवृधेताम महोज्यायो अक्राताम इंद्राग्नि इदम हवि जुषेताम विवृधेताम महोज्यायो अक्राताम। किंतु इदम हवि जुषेताम विवृधेताम महोज्यायो अक्राताम और इंद्राग्नि ज्यायो अक्राताम के एक वाक्य होने में कोई श्रुति प्रमाण नहीं है, अर्थात दोनों में एक वाक्य बोधक वाक्य वेद में नहीं पाया जाता, अतएव वाक्य प्रमाण से दोनों को एक वाक्य मान लिया जाता है। लिंग कल्पना एक वाक्यता संपन्न हो जाने के पश्चात इंद्राग्नि पदगत लिंग रूप शक्ति से इंद्र एवं अग्नि इन दो देवताओं का प्रकाशन होता है, अर्थात लिंग से यह समझा जाता है कि मंत्र एवं उक्त देवताओं के बीच संबंध होना चाहिए। श्रुति कल्पना लिंग के पश्चात श्रुति की कल्पना की जाती है, श्रुति का रूप इस प्रकार होगा। इस मंत्रांश इदम हवि अक्राताम इंद्राग्नि अक्राताम से इंद्र एवं अग्नि देवताओं से संबंधित कोई क्रिया करनी चाहिए। अनेन मंत्र भागे नेन्द्राग्नि विषया काचित क्रिया अनुष्ठेया। पांच विनियोग। किंतु वाक्य प्रमाण द्वारा विनियोग होने में कुल चार व्यापारों की आवश्यकता पड़ती है, वे ये हैं। एक क वाक्य इंद्राग्नि इदम हवि जुषेताम विवृधेताम मंत्रांश के इंद्राग्नि एवं इदम हवि जुषेताम विवृधेताम भागों में वाक्य प्रमाण से एक वाक्यता आती है। ख लिंग कल्पना तदनंतर लिंग प्रमाण से मंत्र एवं दोनों इंद्र एवं अग्नि देवताओं के बीच संबंध समझा जाता है। ग श्रुति कल्पना, मंत्र एवं देवताओं के बीच अंगा अंगी भाव बोध श्रुति की कल्पना की जाती है। घ विनियोग, हम देखते हैं कि प्रकरण प्रमाण एवं विनियोग के बीच तीन व्यापारों वाक्य लिंग एवं श्रुति का व्यवधान है, जबकि वाक्य एवं विनियोग के बीच केवल दो व्यापारों का। इसे सिद्ध होता है कि प्रकरण प्रमाण विनियोग से विप्रकृष्ट है और वाक्य सन्निकृष्ट, अतएव प्रकरण द्वारा विनियोग अमान्य एवं वाक्य द्वारा विनियोग ग्राह्य होता है। इसलिए वाक्य प्रमाण द्वारा इंद्राग्नि इदम अक्राताम इतना मंत्रांश दर्शया का अंग होता है, न कि प्रकरण प्रमाण से इदम हवि अक्राताम इंद्राग्नि अक्राताम मंत्रांश का दर्शयाग और अग्नि शोमाविदम अक्राताम इदम हवि अक्राताम मंत्रांश पूर्ण मास्याग का। इस प्रकार क्रमशः देवताओं के एक युग्म को छोड़कर पूरा मंत्र दर्श एवं पूर्ण मास दोनों यागों का अंग हो रहा था, जिसका बाध वाक्य प्रमाण से हो गया। ध्यान रहे कि वाक्य प्रमाण से अग्निशोमा विदम हवि अक्राताम मंत्रांश पूर्ण मास का अंग और इंद्राग्नि इदम हवि अक्राताम मंत्रांश दर्श याग का अंग होता है। अब प्रकरण प्रमाण का लक्ष्य एवं उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रकरण लक्षणम उभयाकांक्षा प्रकरणम यथा प्रयाजादीषु समिधो यजति इत्यादि वाक्ये फल विशेषस्या निर्देशात् समिद्यागेन भाव एत बोधानंतरम किम इत्युपकार्याकांक्षा दर्श पूर्णमास वाक्येपि दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भाव एत इति बोधानंतरम कथम इत्युपकारकांक्षा इत्थम चोभयाकांक्षया प्रयाजा दीनाम दर्श पूर्णमासांगत्वम। अर्थ, दो वाक्यों की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार समझना चाहिए, प्रयाज यागो के स्थल में समिधो यजति विधि का पाठ है, किंतु समिध याग के अपने फल का निर्देश यहाँ नहीं हुआ है। अतएव समिधो यजति का अर्थ बोध वाक्य समिद्यागेन भाव एत, ऐसा होने पर किम भाव एत, इस प्रकार उपकार्य अर्थात फल की आकांक्षा होती है। इसी प्रकार दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, इस विधि का दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग भावेत, इस प्रकार वाक्यार्थ बोध होने पर कथम भावेत, इस प्रकार उपकारक की आकांक्षा होती है। इस प्रकार उभयाकांक्षा रूप प्रकरण प्रमाण से प्रयाज आदि दर्श पूर्णमास के अंग समझे जाते हैं। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी प्रकरणम लक्ष्यति उभयेत्यादिना आकांक्षात्वम चेत लक्षणम शाब्द बोध कारणी भूताकांक्षायां मति प्रसंगस्तद्वारणाय उभयेति विशेषणम उभयत्वम चेत दोभयत्वावच्छिन्ने घटपटा दावति व्याप्तिस वारणायोत्तरम बलम परस्परम मुभयाकांक्षेत्यर्थ प्रकरणमिति लक्ष्य निर्देश तत्रोदाहरण वारोभयकांक्षायां प्रदर्शयन लक्षण समन्वयम करोति यथेत्यादिना इत्थम चेति अनेन प्रकारेण चेत्यर्थ अर्थबोधिनी। दो वाक्यों की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहते हैं। एक वाक्य फल साधन भूत क्रिया के संपादन प्रकार का विधान करता है, किंतु साध्य फल का नहीं, इसलिए उसे क्रियाजन्य फल की आकांक्षा होती है। दूसरा वाक्य फल का निर्देश करता है, किंतु उस फल के साधनभूत कर्तव्य क्रिया का क्रिया या क्रियाओं का विधान नहीं करता, अतएव इसे कथम भाव, इस प्रकार साधनभूत क्रियाओं की आकांक्षा होती है। इस तरह दोनों वाक्य एक दूसरे के प्रति साकांक्ष रहते हैं, यही आकांक्षा प्रकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए प्रयाजयागो के प्रसंग में समिधो यजति तनुनुपातम यजति आदि क्रिया विधायक वाक्य पाए जाते हैं। उक्त वाक्यों में केवल क्रियाओं का विधान है। समिधो यजति का अर्थ बोध वाक्य समिद्यागेन भाव एत होगा, किंतु यहाँ फल का निर्देश नहीं किया गया है, अतएव आकांक्षा होती है कि किम भावेत अर्थात किसका संपादन करें। दूसरा वाक्य दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, इसका मीमांसा की दृष्टि से अर्थबोध वाक्य इस प्रकार है, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भाव एत अर्थात दर्श एवं पूर्णमास यागो से स्वर्ग की भावना करें, किंतु यहाँ यह नहीं बतलाया गया है कि दर्श एवं पूर्णमास से स्वर्ग की प्राप्ति कैसे करें, अर्थात वे कौन सी क्रियाएं हैं जिनके संपादन से स्वर्ग मिल सकेगा। दर्श एवं पूर्णमास दो प्रधान याग हैं जिनका संपादन अन्य अंगीभूत क्रियाओं से ही हो सकेगा। इस प्रकार दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावेत वाक्य के सुनने पर आकांक्षा होती है कि दर्श पूर्णमासाभ्याम कथम स्वर्गम भावेत। इस प्रकार हम देखते हैं कि समिधो यजति अर्थात समिध्यागेन भावेत वाक्य को फल की आकांक्षा एवं दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत अर्थात दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावेत वाक्य को कथम भाव की आकांक्षा है। उक्त दोनों वाक्य परस्पर साकांक्ष हैं। परस्पर इसलिए कि एक वाक्यगत आकांक्षा दूसरे वाक्य के श्रवण से शांत हो जाती है, अतः परस्पर आकांक्ष रूप प्रकरण प्रमाण से प्रयाज आदि क्रियाएं दर्श पूर्णमास का अंग सिद्ध होती है। वाक्यों की परस्पर आकांक्षा को इस प्रकार स्पष्ट रूपेण समझा जा सकता है। वाक्य एक समिधो यजति समिध्यागेन भाव एत में का उपकारक का विधान यहाँ साधन भूत अर्थात उपकारक भूत समिध्याग का विधान है अर्थात इति कर्तव्यता का श्रवण है। वाक्य विधान करता है कि इस प्रकार समिध्याग के संपादन से करो। ख उपकार्य की आकांक्षा यहाँ उपकार्य अर्थात सहायता प्राप्त करने वाले का श्रवण नहीं है अर्थात समिध्याग किस याग का सहायक होगा इसका निर्देश नहीं है। अभिप्राय यह है कि यहाँ उपकार्य की आकांक्षा समिध्यागेन किम भावयेत रूप में है। वाक्य दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग भावयेत में क उपकार्य का श्रवण प्रकृति वाक्य में उपकार्य अर्थात दर्श पूर्णमास याग का श्रवण है। ख उपकारक की आकांक्षा दर्श पूर्णमास द्वारा जिन साधनों की सहायता से अर्थात जिन अंगभूत क्रियाओं से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है उन साधन भूत अर्थात उपकारक भूत क्रियाओं का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। अतएव प्रकृतिक वाक में उपकारक की आकांक्षा दर्श पूर्णमासाभ्याम कथम भावेत इस रूप में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाक्य एक ख में उपकार्य की आकांक्षा है और वाक्य दो क में उपकार्य का श्रवण है। इस प्रकार वाक्य एक की उपकार्याकांक्षा का शमन वाक्य दो के उपकार्य श्रवण से हो जाता है। इसी प्रकार वाक्य दो ख में उपकारक की आकांक्षा है और वाक्य एक क में उपकारक का विधान है। इसी प्रकार वाक्य की उपकाराकांक्षा का उपशमन वाक्य एक के उपकारक विधान से हो जाता है। प्रकरण प्रमाण से वाक्य एक में भीत प्रयाज आदि वाक्य दो में भीत दर्श एवं पूर्णमास यागो के अंग होते हैं अतएव अंगी हैं एवं प्रयाज उनके अंग हैं। प्रसंग अब सर्वप्रथम प्रकरण के महाप्रकरण एवं अवांतर प्रकरण दो प्रभेद बतलाकर महाप्रकरण के स्वरूप का परिचय दिया जा रहा है। प्रकरणस्य द्वैविध्यम् महाप्रकरण लक्षणञ्च तच्च प्रकरणम् द्विविधम् महाप्रकरणम् अवांतर प्रकरणम् चेति तत्र मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम् महाप्रकरणम् तेन च प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासांगत्वम् एतच्च प्रकृतावेव उभयाकांक्षाया संभवान्नतु विकृतौ तत्र प्रकृतिविद विकृतिः कर्तव्या इत्य तिदेशेन कथं भावाकांक्षाया उपशमेना पूर्वांगा नाम्युप उभयाकांक्षाया विनियोगा संभवात् तस्माद् पूर्वांगानां स्थानादेव विकृत्यर्थत्वम् अर्थ पूर्वोक्त प्रकरण के दो भेद होते हैं एक महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण। इनमें से मुख्य भावना संबंधी प्रकरण को महाप्रकरण कहते हैं। इसी प्रकार प्रमाण से प्रयाज दर्श पूर्णमास के अंग समझे जाते हैं। महाप्रकरण प्रकृतियाग में ही प्रवृत्त होता है क्योंकि अभिभक्त उभयाकांक्षा का होना प्रकृतियाग में ही संभव है विकृतियाग में नहीं। इसका कारण यह है कि विकृतियाग में उभयाकांक्षा की शांति प्रकृति वद विकृति कर्तव्य अर्थात प्रकृति के समान विकृति याग का अनुष्ठान करना चाहिए इस अतिदेश वाक्य से हो जाता है और इसलिए नवीन अंगों का विनियोग भी उभयकांक्षा द्वारा नहीं हो सकता। अतएव स्थान प्रमाण द्वारा ही नवीन अंग विकृति याग के अंग समझे हैं। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी प्रकरणम विभजते तच्च प्रकरणमित्यादिना तच्चेति उक्त लक्षण लक्षितं चेत्यर्थः तत्रेति महाप्रकरणावन्तरप्रकरणयोर्मध्ये इत्यर्थः मुख्यभावनेति फलभावनेत्यर्थः तेन चेति महाप्रकरणेन चेत्यर्थः अंगत्वं बोध्यत इति शेषः तद्धि महाप्रकरणं प्रयाजादि न्यंगानि दर्श पूर्णमासयोर विनि युक्त इत्यर्थः एतच्च महाप्रकरणं चेत्यर्थः तत्र हेतुमाहं उभयेति प्रकृता वेवेत्यनुषंग एव कारव्यावर्त्यमाहन तिति विकृता उभयाकांक्षाया असंभवादिति भावः तत्रेति विकृता वित्यर्थ अतिदेशेनेति अतिदेशवाक्य प्राप्ता प्राकृत अंग जातेनेत्यर्थ कथं भावकांक्षाया इति कर्तव्यता कांक्षाया इत्यर्थ तथा च यद्यप्युप होमादिनां पूर्वांगानामुपहोमादिभिर् भाव एत किं भावये दित्यस्तयाकांक्षा तथापि शौर्यादि विकृति यागस्या अतिदेशवाक्य प्राप्त प्राकृतांगरेव नैराकांक्षेण नापूर्वांगानां व्युपहोमादिनामुभयाकांक्षाया विकृतो विनियोगः संभवतीति भावः ननु प्राकृतांगानां विकृतां वपठितत्वादप्रत्यक्षाणां कथं विकृत्यांशोपशम हेतुत्वं विकृतांगानां तुपहो मादिनामत्र पठितत्वेन प्रत्यक्षाणां संभवत्याकांक्षोपशान्ति हेतुत्वमिति चेन्न तेषां विकृतौ पठितत्वेन प्रत्यक्षत्वेप्य न्यत्राकृप्तोपकारकत्वाच्छीघ्रं विकृत्याकांक्षोपशान्तावसामर्थ्यात् अतिदिष्टानां तु विकृतौ क्लिप्तोपकारकत्वेन संभवति तदाकांक्षोपशमनसामर्थ्यम् न च तेषामेव प्राकृतांगानां विकृतौ प्रकरणाद् ग्रहणं स्यादिति वाच्यं तेषामपि प्रकृता उपकारकत्वेनोपक्षीडाकांक्षत्वात् न च प्राकृतांगानां मात्रोपस्थापकाभावेनानुपस्थित्वमिति वाच्यम् उपमानप्रमाणस्योपस्थापकस्य सत्त्वेन तेषामत्रोपस्थितत्वात् तथा हि शौर्यवाक्यस्य दर्शने यौषधद्रव्यत्वसैकदैव युक्तस्य च सादृश्यस्य दर्शनेनानेन सदृशमाग्नेयवाक्यमित्याग्नेयवाक्यमुपमीयते गवयदर्शनादनेन सदृशी मदीया गौरितिति गोरूपमानवत् आग्नेयवाक्ये चोपमिते तेन तदर्थो ज्ञायते स च त्र्यंशभावनारूपस्तस्मिंश्च ज्ञाते शौर्यवाक्ये भावनाया भाव्यस्य कर्णस्य च विद्यमानत्वेन तत्राकांक्षाभावे पीति कर्तव्यताकांक्षायां प्रकृतोपकारकृष्टभावे नाग्नेयेति कर्तव्यतामतिदिश्य शौर्ययागेन ब्रह्मवाचसंभावये दाग्नेयवदिति सिद्धयति तस्मादाग्नेयेति कर्तव्यतैव विकृत्याकांक्षो पशमने शौर्यादौ विकृता उभयाकांक्षारूप प्रकरणाभावात् स्थानादेवोपहोमादिनाम पूर्वांगानाम विकृतिशेषत्वमित्युपसंहरति तस्मादिति अर्थबोधिनि प्रकरण के दो प्रभेद हैं, एक महाप्रकरण और दो अवांतर प्रकरण। जिस प्रकरण का संबंध मुख्य भावना अर्थात फल भावना से होता है वह प्रकरण महाप्रकरण कहा जाता है। पिछले विभाग में जिस प्रकरण का उदाहरण दिया गया है संख्या 35 वह महाप्रकरण ही है। स्वर्ग रूप फल मुख्य होता है। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इस वाक्य में मुख्य भावना है। समिधो यजति में मुख्य भावना न होकर अंग भावना है। मुख्य भावना का संबंध अंग भावना से है क्योंकि प्रकरण प्रमाण से अंग भावना मुख्य भावना का अंग होती है। अतः मुख्य भावना संबंधी होने के कारण प्रकृत प्रकरण को महाप्रकरण कहा गया है। मुख्य भावना संबंधी की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। मुख्य भावना संबंध कस्यापि मुख्य भावनांगत्वम् मुख्य भावनांगत्वम् कस्यापि अस्ति अस्मिन् इति मुख्य भावना संबंधी बराबर प्रकरणम् अर्थात जिस प्रकरण में अंगीभूत मुख्य भावना के प्रति कोई अंग होता हुआ प्रतीत हो वह प्रकरण महाप्रकरण कहलाता है। ध्यान रहे यहाँ मुख्य का अर्थ सर्वतोमुख्य है, आपेक्षिक मुख्य नहीं। प्रयाज आदि की अंगभूत क्रियाएं भी प्रयाज के अंग होती हैं और प्रयाज उनके अंगी इस अंगांगी भाव को अंग प्रधान भाव भी कहा जा सकता है। इस दृष्टि से अंगभूत क्रियाओं के प्रति प्रयाज प्रधान या मुख्य हुए। प्रयाज स्वयं दर्श एवं पूर्णमास के अंग हैं, परंतु महाप्रकरण स्थल में ऐसी मुख्यता विवक्षित नहीं है, अपितु सर्वोत्कृष्ट फल संबंधी मुख्यता विवक्षित है। ऐसी मुख्यता उत्पत्ति विधियों में पाई जाती है, अतएव उत्पत्ति विधि में निहित मुख्य भावना जहाँ पर किसी अंग का अंगी हो वह प्रकरण महाप्रकरण कहा जाता है। इस प्रकार महाप्रकरण से प्रयाज दर्श एवं पूर्णमास अंगी के अंग होते हैं। प्रकरण की प्रवृत्ति केवल प्रकृति याग में होती है, विकृति याग में नहीं। इसका कारण यह है कि प्रकृति याग में उभयाकांक्षा नहीं होती। यदि विकृति याग में कथम भाव एत इस प्रकार कथम भाव की आकांक्षा होती भी है तो वह आकांक्षा अतिदेश वाक्य से शांत हो जाती है। प्रकृतिविद विकृति कर्तव्या यह अतिदेश वाक्य है। इसका अर्थ है कि प्रकृति के समान विकृति याग का अनुष्ठान होना चाहिए। इसलिए जब एक और आकांक्षा ही नहीं हुई तो उभयाकांक्षा भी नहीं हुई। यही कारण है कि विकृति याग में कोई भी प्रकरण नहीं होता, चाहे महाप्रकरण हो और चाहे अवांतर प्रकरण। अवांतर प्रकरण का विवेचन अग्रिम विभाग में किया जाएगा। विकृति यागों में कुछ ऐसे नवीन अंगों अपूर्वांगों का विधान मिलता है जिनका विधान उनके प्रकृति याग में नहीं हुआ रहता है। इन अंगों के विषय में इस प्रकार फलाकांक्षा होती है कि ये नवीन अंग किस लिए हैं, ए भी किम भाव एत। इस फलाकांक्षा का शमन प्रकृति वद विकृति कर्तव्य इस अतिदेश वाक्य से नहीं हो सकता, क्योंकि ये अंग प्रकृति में पाए ही नहीं जाते हैं। क्या यहाँ उभयाकांक्षा से प्रकरण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि यहाँ फलाकांक्षा अवश्य है, फिर भी कथम भावनाकांक्षा नहीं है, क्योंकि कथम भाव कांक्षा यदि होगी तो उसका शमन अतिदेश वाक्य से हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ केवल एक आकांक्षा फलाकांक्षा हुई, परस्पर उभय दो आकांक्षाएं नहीं हुई, अतएव यहाँ प्रकरण की प्रवृत्ति नहीं होगी और नवीन अंग विकृति याग के अंग होते हैं। यह निश्चय स्थान प्रमाण से होता है। स्थान प्रमाण का विवेचन विभाग में किया गया है। उदाहरण के लिए उक्त विषय को इस प्रकार समझा जा सकता है। सौर एक विकृति याग है, इसका प्रकृति याग दर्श पूर्णमास है। विकृति याग सौर के अंतर्गत उपहोम आदि कई नवीन क्रियाओं का विधान है। उपहोम आदि का विधान दर्श पूर्णमास में नहीं है, अतएव उपहोमादि क्रिया भी किम भावेत द्वारा फलाकांक्षा होती है जिसका शमन अतिदेश वाक्य से नहीं हो सकता, कारण उपहोम आदि क्रियाएं प्रकृति याग में श्रुत नहीं है। इस प्रकार प्रकृति स्थल में एक आकांक्षा होती है, दूसरी कथम भावाकांक्षा नहीं होती है, क्योंकि सौरी यागेन कथम भावेत इस कथा कथम भावाकांक्षा का शमन अतिदेश वाक्य से ही हो जाता है, अतएव यहाँ उभयाकांक्षा नहीं रह पाती है कि जिससे प्रकरण हो सके। प्रश्न है कि उपहोम आदि अपने प्रकृति याग सौर के अंग किस प्रमाण से समझे जाते हैं? उत्तर है स्थान प्रमाण से। स्थान प्रमाण का विवेचन विभाग 41 से 45 में किया जाएगा। प्रसंग अब अवांतर प्रकरण का लक्षण किया जा रहा है। अवांतरण प्रकरण लक्षणम अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरणम तेन चाभिक्रमणादीनाम प्रयाजाद्यंगत्वम तच्च संदंशेनैव ज्ञायते तद्भावे चाविशेषात् सर्वेषां फल भावना कथम भावेन ग्रहण प्रसंगेन प्रधानांगत्वा पत्तिः। अर्थ अंग भावना से संबंधित प्रकरण को अवांतर प्रकरण कहते हैं। इसी अवांतर प्रकरण से अभिक्रमण आदि क्रियाएं प्रयाज आदि यागों का अंग समझी जाती हैं। इस प्रकार के अंगत्व का बोध संदंश के द्वारा होता है, क्योंकि संदंश के अभाव में प्रयाज अभिक्रमण एवं इसी प्रकार की सभी क्रियाएं फलाकांक्षा में अन्वित होने लगेंगी और प्रधान का अंग होने लगेंगी। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी अवांतर प्रकरणम लक्ष्यति अंग भावेनेति तेन चेति अवांतर प्रकरणेन चेत्यर्थ अत्रापि बोध्यत इति शेषः तच्चेति तेन तेषां तदंगत्वं चेत्यर्थ संदंशे नेति संदंशो लोह कंटक विद्ध लोह शलाका द्वय रूपस्तेनेत्यर्थ तन्यायेनेति यावत् तदनंगीकारे दोषमाह तद्भाव इति संदंशाभाव इत्यर्थ आविशेषात् प्रकरणाविशेषात् सर्वेषां प्रयाजादीनां मभिक्रमणदीनां च कथं भावेन इति कर्तव्यतारूपेण प्रधानांगत्वापत्तेः दर्शादि प्रधानांगत्वापत्तेः तथा चाभिक्रमणादीनां प्रयाजाद्य गत्वग्रहे सन्दंशस्याभावे सति दर्शादि प्रधानयाग प्रकरण पाठाविशेषात् प्रयाजादि वदभिक्रमणादीनापि दर्शादि फलभावनाया इति कर्तव्यता कांक्षाया ग्रहण प्रसंगेन दर्शादि प्रधानयागांगत्वापत्ते सन्दंशे नैव ज्ञातुं शक्यत इति समुदायार्थः अर्थबोधनी अवांतर प्रकरण होने के कारण यह आवश्यक है कि एक उभयाकांक्षा हो और दो अंग क्रियाएं अंग भावना का अंग हो, अर्थात इस स्थल में अंगीभूत क्रिया भी किसी का अपने प्रधान का अंग होती है। उदाहरण के लिए दर्श पूर्णमास के अंग रूप में प्रयाज आदि क्रियाओं का प्रयाजाह कर्तव्याह इस प्रकार विधान है। इसी प्रसंग में अभिक्रमण आदि क्रियाओं का विधान है, अतएव प्रयाजह कथम भावेत इस प्रकार कथम भावाकांक्षा एवं अभिक्रमणादि भी किम भावेत इस प्रकार उपकार्याकांक्षा होती है। अतः यहाँ परस्पर दोनों की आकांक्षा स्पष्ट है, क्योंकि एक की आकांक्षा की शांति दूसरे से इस प्रकार होती है अभिक्रमणादि भी प्रयाजात पूर्वम भावेत एवं अभिक्रमणादि भी प्रयाजानुष्ठानम भावेत। यहाँ साध्य होने के कारण प्रयाज अंगी है एवं अभिक्रमण आदि अंग, यहाँ के अंगीभूत प्रयाज भी दर्श पूर्णमास के अंग हैं, अतएव यहाँ का प्रकरण अंग भावना संबंधी प्रकरण हुआ, इसी को अवांतर प्रकरण कहते हैं। यदि संदंश द्वारा अंगांगी भाव का बोधक नहीं स्वीकार किया जाएगा तो दर्श पूर्णमास के अंगभूत अभिक्रमण आदि भी प्रयाज की भांति साक्षात रूप से दर्श पूर्णमास के अंग होने लगेंगे, किन्तु ऐसा नहीं होता। जैसे प्रयाज दर्श पूर्णमास के अंग है, वैसे अभिक्रमण आदि क्रियाएं भी दर्श पूर्णमास का अंग होंगी, क्योंकि संदंश जिसके द्वारा अभिक्रमण आदि प्रयाज के अंग समझे जाते हैं अस्वीकृत हो गया है। इस प्रकार दर्श पूर्णमास में विहित कोई भी क्रिया साक्षात दर्श पूर्णमास का ही अंग हो जाएगी, प्रयाजादि के द्वारा नहीं होगी। फिर प्रयाजादि के प्रसंग के अभिक्रमण आदि का पाठ व्यर्थ ही हो जाएगा और कोई भी क्रिया प्रयाज आदि का अंग न हो सकेगी, किंतु ऐसा नहीं माना जा सकता। अतएव संदंश के द्वारा अंग बोध सिद्ध होता है। प्रसंग अब संदंश का लक्षण किया जा रहा है।